Marcus Mantra. Mantra. Marcus Mantra. Marcus Mantra. Marcus Mantra. Marcus Mantra. Mantra. Marcus Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, aarthik aur share bazaar se sambandhit taza khabron ko lekar hazir hain. Hamare saath aaj khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain desh ke jane mane arthashastri Dr. S.P. Sharma. Dr. Sharma, karyakram mein aapka swagat hai.
Ji, shukriya, thank you.
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसीज एंड फ्लैट. सेंसेक्स मार्जिनली डाउन बाय 7 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस अबव 22,550. मेजर एशियन इंडिसीज लॉग लॉसेस व्हाइल यूरोपियन इंडिसीज ट्रेड इन नेगेटिव टेरिटरी. एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज. ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स एट $70.54 पर बैरल.
घरेलू शेयर बाजार में बिना किसी खास उतार चढ़ाव के हुआ कारोबार. प्रमुख सूचकांक अपने पूर्व स्तर के नजदीक ही हुए बंद. सेंसेक्स 7 अंक फिसला. निफ्टी 22,550 के ऊपर हुआ बंद. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज की गई बिकवाली. यूरोपीय शेयर बाजारों में भी दिख रही है नरमी. और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी. ब्रेंट क्रूड के भाव $70.54 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचे. घरेलू शेयर बाजार आज बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए. हालांकि एक सीमित दायरे में कारोबार होता नजर आया और कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 7 अंकों की मामूली गिरावट लेकर 74,332 दर्ज हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी 8 अंक बढ़त के साथ 22,552 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार की ओर चलें तो सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तरह छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी वही रुझान देखने को मिला. एक और बीएसई मिडकैप इंडेक्स बिकवाली के दबाव में 0.3% नुकसान के साथ बंद हुआ. वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स लिवाली से 0.7% लाभ में रहा.
Benchmark domestic equity indices ended nearly unchanged in the week's last trading session today. The 30-share index at the BSE Sensex fell slightly by 7 points to close at 74,332, while the NSE Nifty 50 added 8 points to settle at 22,552. The broader market indices at the BSE ended mixed. The mid-cap index dropped 0.3%, while the small-cap index advanced over 0.7%. In the Sensex pack, 17 out of 30 companies ended in negative territory. Among the top laggards, Zomato dipped over 3.8%, IndusInd Bank slipped over 3.5%, and NTPC dropped almost 2.5%. Conversely, among the top gainers, Reliance rose more than 3.1%, Nestle India gained over 1.6%, and Tata Motors increased over 1.3%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 13 out of the 21 sectors ended down. Among the top laggards, the consumer durables lost 1.1%, utilities slipped over 0.9%, and IT fell over 0.8%. In the top gainers, industrials advanced to over 0.8%, commodities rose over 0.6%, and energy added almost 0.6%. Meanwhile, the overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,512 companies advanced, 1,468 companies declined, and 134 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 17 companies hit their 52-week high, while 37 hit their 52-week low.
नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 23 पैसे मजबूत हुआ. 86.88 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की प्रमुख 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में 103.73 पर चल रहा था. डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को?
देखिए, जो आज का कारोबार रहा, एक तो थोड़ा उत्साहित था
मार्केट्स में उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखी गई जितनी हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे थे, और थोड़ी रिकवरी आने की संभावना देखी गई कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग है, मार्केट्स जो है शायद जो अभी रिसेंट बॉटम किया 22,100-22,200 के आसपास, तो उससे वापस जो है रुख मार्केट्स ने ऊपर की तरफ किया है। लेकिन ज्यादातर ये शॉर्ट कवरिंग लग रही है क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो है वो अभी भी नेगेटिव में है, आज भी वो बढ़त में नहीं आए, कुछ ही शेयर थे जिन्होंने बाजार को उठा के रखा। तो कुल मिला के जो है एक माहौल चेंज होते हुए तो दिखाई दिया, बट अभी आने वाले टाइम में जो अनसर्टेनिटी है वो भी बरकरार है। हम इसको एक हेल्दी रिकवरी तो नहीं कहेंगे, बट स्टिल जो है एक सेंटिमेंट चेंज होने की बात हमने इसमें जरूर देखी है।
सो यू सीन द डीआईआईज बीइंग द नेट बायर्स इन द मार्केट विद द एफआईआईज द नेट सेलर्स, नो सरप्राइजेस देयर। Lot of focus on Reliance Industries. That specific stock action today went up by 3.1%. We know that Reliance has a 10% weightage on the Sensex. So any buying in bulk over the counter would obviously push the Sensex
support
up.
The market, yeah.
But we also saw metal index and PSU stocks go up. What were the reasons? Do you find investors taking a position right now for maybe to profit book later?
Yes, Arjun. I think this is the value buying in some blue chip shares like the Reliance Industries. Reliance was very, very rigid above 1200 per share in the last many sessions. Reliance was not decelerating, but a few days back, Reliance decelerated below 1200. But now the value buying has come and the investors are picking the Reliance. That's why the market was supported significantly.
Even though energy actually went up by 0.6% today. But tell us about metal and PSU.
Yes, that again value buying, because the stocks were decelerating significantly during the last many sessions. So now the prices are becoming rational. I would say many stocks are at 52 weeks low. So that's why some people are entering in the market, getting the opportunity to enter in the market. Those who were not that much there in the market at the high levels, but now seeing the correction and the rational prices or the bottom prices, they are anticipating that markets are perhaps at the bottom level and they are entering in the market to gain from the higher level.
डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान रुपए की ओर आकृष्ट करना चाहेंगे, साथ ही डॉलर पिछले कुछ दिनों में लगातार मजबूत होता दिख रहा था और जो इंडेक्स था दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में वो भी 108-109 के आसपास चल रहा था, उसमें भी हम कमी देख रहे हैं, 103 के आसपास चला आया है डॉलर इंडेक्स छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में। साथ ही रुपया आज मजबूत हुआ है, तो क्या प्रमुख कारण रहा, आरबीआई का हस्तक्षेप या क्या हम कारण माने रुपए में आज की मजबूती, और डॉलर में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरमी आ रही है उसके पीछे क्या कारक लग रहे हैं?
देखिए, जो हम पॉलिसी स्टांस की बात करते हैं, हम पॉलिसी के यूएस में पॉलिसी स्टांस चेंज हो रहा है, टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर और बहुत जगह पे ऐसे टैरिफ लगाने की बात है, तो उसे कोई भी इकोनॉमी आइसोलेशन में आप टैरिफ लगा के या फिर अपना जो ट्रेड टर्म्स हैं अपने फेवर में करके आप आगे ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज होल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। तो उससे अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, अब उनको ये लगने लगा है कि अभी आने वाले टाइम में ये जो वॉर है, दिस विल डीपन, ये काफी ज्यादा गहराएगी, जिससे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के ऊपर फर्क आएगा, क्योंकि जब टेंशन होती हैं तो प्रोडक्शन के ऊपर फर्क आएगा, कि जो बिजनेसेस हैं वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम में शायद वो जो सामान बना रहे हैं उतना ज्यादा प्रफुल्लित नहीं होगा, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ही नॉट ओनली फॉर द सिंगल कंट्री या फिर एनी स्पेसिफिक कंट्री, सभी कंट्रीज के ऊपर ही उसका फर्क आता है। अब यूएस ने ये सब चीजें अनाउंस की, बट यूएस भी कोई आइसोलेटेड इकोनॉमी तो नहीं है, यूएस का भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड है, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 29-30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है जीडीपी है, तो उसको भी ये जो इम्पैक्ट है वो सहन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो डॉलर शुरू में जो धारणा थी कि यूएस ऐसे टैरिफ लगा के बहुत अच्छा आगे ग्रो कर लेगा और जो पूरा इकोनॉमी है उसमें वो एक ग्रेट गंगहो क्रिएट करेगा कि एवरीथिंग इज नाउ इन फेवर ऑफ अमेरिका, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज वी आर नाउ इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, वी आर इंटरकनेक्टेड, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, we are not in a isolation, so that's why everybody will be feeling the impact of such wars or such policy announcements or the volatility in the announcements, kyunki kabhi to hum usme कहते हैं कि भी हम लगा रहे हैं, कभी फिर हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक अनसर्टेनिटी जो है वो इन्वेस्टर्स के माइंड में हुई है.
सो मेक्सिको हैज गॉट अ मंथ्स कंसेशन राइट नाउ बिफोर द पॉलिसी ऑफ टैरिफ किक्स इन, एटलीस्ट फॉर मेक्सिको, दैट्स द लेटेस्ट न्यूज. बट कमिंग बैक टू आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इट्स $639 billion एंड द आरबीआई was into dollar selling to stabilize the rupee to the tune of $80 billion plus. Now we're seeing the dollar index from 108, 107, now come down to below 104. Do you see dollar denominated trade actually coming down because of these tariff barriers created by Trump?
Yes, because as I already discussed, because you are not in isolation, you are connected with the global economy. You can't take decision in isolation that this will be in my favor or my economy will grow if I impose so and so tariff.
How is India going to be impacted? Because we're looking at corporate earnings for the fourth quarter, which will come out. How is that likely to play out, both in terms of employment and in terms of the valuation of the stock on the Sensex and Nifty? And there's the other side as well, where there is going to be some advantages on the currency valuation on the rupee. How do you see that working out with India looking at other markets, especially markets where there's going to be reciprocal tariffs, and now India is also looking to strike a deal with China?
Yes, I don't see any deep impact on India's macroeconomic fundamentals, but yes, there is an impact on through the financial channels, like the stock markets and currency markets are very, very volatile. But going forward, we have great strength of our domestic economy and the rural economy, and we have a great demand also. So growth will not be that much impacted. We will grow more than 6%. Even in the current year also, we will grow at around 6.7 or 6.8%. Next year also, we will grow more than 6.5%. So the projections are very strong, but still there is impact through the financial channel. Like the markets are very, very volatile, which can impact the sentiments of the producers in the coming times. But I believe this volatility is short-lived, and US will stabilize in next few weeks, because there is no gain from such announcements, and US will become rational in the coming times in its thought process.
हमने चर्चा की विदेशी मुद्रा भंडार की, तो श्रोताओं आइए हम आपको ताजा आंकड़ों से अवगत कराते हैं. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब 78 करोड़ डॉलर घटकर 638 अरब 69 करोड़ डॉलर के आसपास आ गया. पिछले सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की गिरावट आई और ये 73 अरब 27 करोड़ डॉलर के आसपास रहा. विदेशी मुद्रा भंडार का एक मुख्य घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 4 करोड़ डॉलर से अधिक घटकर 543 अरब 35 करोड़ डॉलर पर आ गई. इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में केंद्रीय बैंक की स्थिति 1 करोड़ 20 लाख डॉलर घटकर 4 अरब 7 करोड़ डॉलर के आसपास पहुंच गई. इस बीच एसडीआर 2 करोड़ 70 लाख डॉलर बढ़कर 17 अरब 99 करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच गया. यहां पर हम आपका यानी ध्यान आकृष्ट करते हुए इन आंकड़ों पर समझना चाहेंगे कि अभी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, इसे कंफर्टेबल माना जाए कि हमारे पास सुरक्षित रूप से ठीक ठाक हमारा भंडार है?
जी बिल्कुल, हमारा जो अभी विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत स्ट्रांग है, और हम 2024 में तो हम हर एक महीने ही ऑल टाइम हाई पे जाते रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हमें बेनिफिट मिला है कि डिस्पाइट सो मच वॉलेटिलिटी एंड डिसेलरेशन हमारा जो विदेशी भंडार है वो एकदम से स्ट्रांग है. हमारे इम्पोर्ट को बड़े अच्छे से सपोर्ट कर रहा है, हमारे इम्पोर्ट से ज्यादा है, तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि इसका हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी. दिस विल सपोर्ट अस इन आवर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, क्योंकि जब विदेशी मुद्रा भंडार कमजोर हो तो रूपी के ऊपर और इम्पैक्ट आता है। तो भले ही रूपी के ऊपर जो डेली बेसिस पे जो मार्केट्स में वॉलीटिलिटी देखते हैं कुछ इम्पैक्ट आता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जब भी ये वॉलीटिलिटी समाप्त होगी, जब ये अनसर्टेनिटीज खत्म होगी, तो हमारा जो रूपी है वो भी संभल जाएगा आप देखेंगे, और जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी वापस अपने उच्च स्तर पे जो हमने पहले देखा वहां पे जाने की उम्मीद है।
डॉक्टर शर्मा, द सेंसेक्स इज 7 points down today, but Nifty is what we need to be looking at, because Nifty is 22,552. It actually went up by 8 points, and you have GIFT Nifty at 22,605, which is below 30 points right now. What is the futures market telling you in terms of index participation? Because portfolio is all based on the Sensex 30 and Nifty 50. So how do you see mutual funds and other institutional investors from the domestic side looking at buying into Nifty stocks, so that our listeners will have some idea what's going to happen next week? We know there's going to be volatility, but what is a futures market telling us about the spot market right now?
Futures market is telling us that markets will remain volatile, because now the global economic fundamentals are more in
focus. Should they buy, sell or hold?
I can't say that should they buy, because the markets are expected to be remain volatile significantly in the coming days also. But the investors should remain invested. Those who have already invested, those it should not be in panic. They should remain invested because they have already put their money in the market. But the advice is that new investors should not come for the short-term gains. If they want to invest for the longer period, then they are most welcome. But if they want to gain from the shorter period, 1 month or 3 months or 4 months, they should not enter the market. Because markets are expected to remain volatile in the coming days too. Because now the global macroeconomic fundamentals are more focused, because earlier we are observing that our fundamentals are very, very strong. But now the global macro, like the global inflation, global Fed rate in US, and global tariffs, like the tariffs by US, all these things will matter for the markets in any country.
यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम अपने जो श्रोता हैं उनके नज़रिए से समझना चाहेंगे कि ठीक है, जो दुनिया की अभी स्थिति है वो उतार चढ़ाव वाली है, और किस दिशा में नाव जाएगी शेयर बाजार की, दुनिया भर के शेयर बाजार की, वो तय बहुत साफ नहीं दिख रही, कोई एक दौर नहीं दिख रहा कि अब लगातार ऊपर या लगातार नीचे। ऐसे में पूरे साल भर का, यानी अभी मार्च चल रहा है तो मार्च के अंत, यानी कह लेंगे दिसंबर तक इस वर्ष, किस सेक्टर को आप ये मान के चल रहे हैं कि वो सेक्टर अभी निवेश किया जाए तो कम से कम साल भर में उसमें बेहतरी आने के आसार कहां दिख रहे हैं आपको भारतीय बाजार को देखते हुए?
देखिए, मेरे को जो इस टाइम पे जो सेक्टर्स हैं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मेरे को काफी आकर्षित दिख रहा है, जिसमें क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमारा बहुत फोकस है। हमारा फोकस विकसित भारत के ऊपर है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं बाय 2047। सरकार की बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हैं, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत अच्छा अमाउंट इस साल भी दिया है, पिछले साल भी बहुत बढ़ोतरी की गई थी। तो कुल मिला के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स हैं उनमें एक वैल्यू बाइंग अभी हो सकती है, बट नॉट फॉर द शॉर्टर पीरियड। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर कोई ये सोचे कि मेरे को एक महीने या दो महीने में, तीन महीने में लाभ मिलेगा, वो मिलने वाला नहीं है। अगर आज खरीदेंगे तो हो सकता है उसमें और करेक्शन आ जाए, तो एक ही बार में अपना मनी भी नहीं लगाएं, उसको स्टेप्स में, सेप में, या फिर अपने तरीके से स्लोली स्लोली उसको इन्वेस्ट करें। जब भी मार्केट में लगे कि स्टेप्स में अभी मार्केट गिरी है तो उसमें फिर एंटर करें, फिर एक ही बार में नहीं जाना है। लेकिन ये सेक्टर बहुत ही अच्छा, एक आकर्षित लग रहा है। दूसरा बैंकिंग में काफी हमने गिरावट देखी है पीछे, एक तो इंटरेस्ट रेट हाई थे या उसका एडवांटेज नहीं मिला, और दूसरा अभी भी जितना एक्सपेक्टेड था कि रेपो रेट कम होगा और ग्लोबली फेड रेट बहुत सिग्निफिकेंटली कम होगा, वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से काफी जो प्रेशर था वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अभी हमने देखा है। काफी स्टॉक्स में करेक्शन आई है, तो उसमें भी एक वैल्यू बाइंग जो है वो देखी जा सकती है। और तीसरे पे जो एनर्जी के स्टॉक्स हैं खास करके, क्योंकि एनर्जी के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है, एनर्जी को हम एक हमारा जो फोकस है क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, तरफ और एनर्जी सफिशिएंट हम बनना चाहते हैं, एनर्जी सरप्लस हम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं एनर्जी के स्टॉक्स में, दोज विल बी वेरी वेरी हाई इन द कमिंग टाइम्स.
डॉक्टर शर्मा, यू मेंशन अबाउट निफ्टी बैंक. बैंक निफ्टी एक्चुअली वेंट डाउन बाय 130 पॉइंट्स टुडे, बट its linkage to the central bank. How do you see lending rates right now? Repo is at 6.25, bank rate is 6.75. Again, the RBI governor is eyeing inflation figures as well. So how do you see borrowing by both retail customers and businesses being affected? What's going to be the next tactic, the strategy of the government? Because Atmanirbhar is a way of countering the tariffs. MSMEs are being promoted so that, you know, we are able to manufacture domestically. We are able to meet our own needs without having to import for it. So how do you see the Monetary Policy Committee taking a decision?
Like we have observed so much volatility in the markets, and there is some need for the liquidity injection. I would say the liquidity is needed at right now in the system. Like the European Bank, they have also reduced the rate by 0.25, observing the volatility in the markets and deceleration in the stock markets and the extreme volatility in the financial markets. So going forward, as the inflation conditions are becoming benign and our growth is also at sustainable level, like 6.7 or say 6.6%. So at this juncture, we need some support from the policy front, particularly from the liquidity front. Like if the repo rate is reduced further in the coming times by 25 basis points or the 50 basis points, that will give a great support to the sentiments, to the businesses, to the investors and to the consumers, to support the consumption segment and overall investment scenario in the country. That will also reduce the cost of doing business of the producers in this uncertain environment.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज बिकवाली कुल मिलाकर तेज रही है. जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 2.2% लुढ़क गया. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.5% के आसपास गिरावट हुई. हांगकांग का हैंगसेंग भी 0.5% से अधिक ही नुकसान में रहा. उधर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी लगभग इतने ही के आसपास कमी देखने को मिली. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा. यूरोपीय जोन की ओर चलें तो प्रमुख बाजारों में वहां भी बिकवाली दिख रही थी. समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी के डेक्स में 1.5% से अधिक की गिरावट बनी हुई थी. लंदन का फुटसी 100 0.4% घाटे में था. फ्रांस के कैक 40 में 0.9% से अधिक की कमी बनी हुई थी.
हाउ इम्पोर्टेंट इज डेट टू जीडीपी राइट नाउ फॉर एशियन इकोनॉमीज लाइक जापान? व्हाट्स द बैंक ऑफ जापान रिस्पॉन्स गोइंग टू बी टू दिस टैरिफ प्लान ऑफ द यूएस?
I think this will impact not only a single economy or in Asian or some other countries. This will impact the whole scenario, because trade war is not in favor of anyone. So whether Japan or Mexico or Singapore or any other country, the trade wars are not in favor of anyone.
Moving on to the U.S. market, U.S. stocks declined yesterday, weighed down by market jitters over the current uncertainty surrounding U.S. trade policy. The Nasdaq composite shed over 2.6%, S&P 500 closed almost 1.8%, while the Dow Jones Industrial Average dropped almost 1%. Earlier, President Donald Trump announced that goods from Canada and Mexico covered by the U.S.-Mexico-Canada trade agreement will be exempted for a month from the 25% tariffs imposed earlier this week. This concession for 1 month, while at the same time their own stock market across all three exchanges have fallen, that's taking a hit. FIIs are selling in their own market, they're selling in our market. So what is Trump's thinking right now? Is this concession going to extend beyond 1 month?
Thinking is very volatile, actually, Arjun, I would say, because now when we are observing that there was some announcement, then again the that was called off. So I don't see that there is some consistency in the policy environment. So that's why the markets are confused, and markets are becoming more and more volatile each day. So the investor confidence is also decelerating, not only in the Asian countries or some other countries, but in the US also the investor confidence is coming down.
In more news, the new chairperson of SEBI, Tuhin Kanta Pandey, said today that a framework requiring SEBI board members will be introduced to disclose any conflicts of interest to the public. Addressing his first public event, Mr. Pandey emphasized that this is crucial for transparency and added that such initiatives would help the regulator gain the trust of the ecosystem. Amid concerns over heightened foreign institutional investor outflows, the SEBI chief stated that the capital markets regulator is further rationalizing the regulations governing their operations. Mr. Pandey opined that both domestic and foreign capital are essential to support the country's growth momentum and highlighted that India remains an attractive destination for long-term investments, drawing global investments across equities, debt and private equity spaces over the years. So this is a very strong statement over conflict of interest. Very briefly, how do you see the typical investor participation in F&O market?
Because F&O market was very, very problematic. People were discussing that that is impacting the investment scenario of many retailers. But now some stability is there with the changing stance of the FMO investments. Now the size is also increased. So that's why the participation of the speculators is coming down. So going forward, the role of regulators will be very, very important to track the market and to reduce the volatility and to build the confidence of the investors.
आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोप के साथ मेलजोल बढ़ा रहा है. आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपने भाषण में डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रकाश डाला. उन्होंने 21 आयुक्तों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन की हाल की भारत यात्रा को याद किया. उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ लगभग 23 वर्षों से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद जताई कि ये प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी.
In more news, U.S. President Donald Trump signed an executive order establishing the country's strategic Bitcoin reserve yesterday. President Trump's order came a day after hosting a crypto summit at the White House. The Treasury Department will set up an office to administer the reserve, which will be capitalized with Bitcoin confiscated by the government as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. In more news, from crude oil, oil prices edged up today. Brent crude was trading over 1.5% up at around $70.54 per barrel. WTI crude was also trading over 1.5% up at around $67.39 per barrel. And reports last came in, notwithstanding the geopolitics of oil from countries like Iran, for instance. So how do you see oil prices right now? We have the World Bank report that global growth would be 2.7% for this financial year, calendar year for that matter. Do you see oil supplies actually going up, production going up and prices going up?
I think this rise is because of the technical reasons. This is the technical correction in the crude prices. Those are going up because of the dollar weakness, actually. When the dollar weakens, the prices of the crude and gold goes up technically. So that's the reason. I don't see that there is demand happening or some supply disruptions are there. That's why the prices are going up. But this is the only technical cost.
आइए चलें सर्राफा बाजार. आज सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की चमक थोड़ी नरम दिख रही थी. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.9% घटकर 86,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.67% घटकर 97,680 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी. एमसीएक्स पर अप्रैल आपूर्ति वाले सोने का मूल्य बिना किसी बदलाव के 86,041 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. मई आपूर्ति वाली चांदी 0.56% घटकर 97,589 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे.
जी शुक्रिया. थैंक यू.
And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices end flat. Sensex marginally down by 7 points. Nifty closes above 22,550. Major Asian indices log losses, while European indices trade in negative territory and global crude oil prices rise. Brent crude trades at $70.54 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.